पिछली बार हम गीता के 16वें अध्याय 16 चैप्टर जिसका नाम है दैवी असुरी संपत्ति योग टू डिस्कर्न द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर ऑफ ए ह्यूमन माइंड। हम सबके अंदर दो तरह की चीजें होती है, अच्छा भी और बुरा भी। हमारे में से ही राक्षस पैदा होते हैं और हमारे में से ही देवता पैदा होते हैं। देवता कोई स्वर्ग में रहने वाले मिथिकल कैरेक्टर नहीं है, असुर कोई लंका में या और कहीं रहने वाले नहीं है। हमारे में से जिसका व्यवहार ज्यादा आसुरिक गुणों से भर जाता है, डिमोनिक नेचर को ज्यादा एक्सप्लोर करता है, तो वो राक्षस बन जाता है। और हमारे अंदर जो दिव्य गुण है, जब उसको हम पॉलिश करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमारे में से कोई देवता बन जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके अंदर राक्षसत्व भी है, उसके अंदर असुरत्व भी है। शैतान भी उसी वही है, देवता भी वही है। जब हम इसे समझ जाएं, तो फिर हम अपने लाइफ को जीने के लिए डिसीजन लेने में आसान होता है। इसलिए बहुत ही सुंदर चैप्टर है गीता का 16वां चैप्टर। हमने पिछले बार कुछ दैव गुण जो हर इंसान के अंदर है उसकी चर्चा कर रहे थे। एक बार मेरे साथ मिलके बोलिए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपयीशुनम् दया भूतेश्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। बहुत सुंदर। पिछली बार हमने चर्चा की अभय, फियरलेसनेस, निडर। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डर होता हुए भी डर को दबाते हैं, जो हीरो लोग हैं, जो बहादुर लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं। हमारे आप में से कोई हीरो है, डर तो उनके अंदर भी होता है, या तो नेचुरली वो डर को दबाते हैं या ट्रेंड होकर के डर को दबाते हैं। जिन चीजों को करने में हमें डर लगता है वो वहां पर डर को दबा के कर जाते हैं। दूसरा है कि डर है ही नहीं, डर है नहीं, क्योंकि डर की जो बीज है, डर जहां से पैदा होता है, ओरिजिन होता है, वही चीजें ही आपके अंदर नहीं है। और डर का मूल कारण हमारे शास्त्रों में कहा मौत का डर होता है। व्यक्ति कितने जन्मों से जो मरता है, पैदा होता है, वो मृत्यु का जो डर है वो धीरे 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 उसके सबकॉन्शियस में ऐसे बना रहता है। तो जिससे भी आप डरते हो, आप पढ़ाई से डरते हैं, पिटाई से डरते हैं, डांट से डरते हैं, गरीब होने से डरते हैं, बीमार होने से डरते हैं, जिससे भी आप डरते हैं, उसके मूल में रीजन ये है कि मौत है। आप गरीब होने से डरते हैं क्योंकि धन होता है तो एक सुकून रहता है कि चलो धन है, मैं कुछ कर सकता हूं। तो जीवन में जहां से भी डर लगे वो मृत्यु के कारण होता है। और जो मृत्यु को समझ जाता है कि मृत्यु क्या चीज है, जीवन क्या है, फिर वो भयहीन हो जाता है। वो भय को दबाया हुआ कोई बहादुर नहीं होता, वो कोई सन्यासी या योगित्व को प्राप्त करता है, दिव्यता को प्राप्त करता है। दूसरा कहा सत्व संशुद्धि, सत्व मतलब मन, मन को शुद्ध रखना, जिसका स्वाभाविक रूप से शुद्ध मन हो। पैदा होने के साथ साथ हम एक ऐसा मन लेकर के आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी उसके अंदर इनकल्केटेड रहता है, बना हुआ रहता है, कितने जन्म जन्मांतरों का संस्कार जो है, मेमोरी जो है, हमारे माइंड में बना रहता है, उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। और ऊपर से पैदा होने के बाद फैमिली, सोसाइटी, स्कूल से रटा रटा के ट्रेनिंग दे दे करके एक चीज को इतने बार रिपीट करा करा के हमारे माइंड को एक खास तरह के बना दिया जाता है। वो माइंड कोई एब्सोल्यूट माइंड नहीं है, वो ट्रेंड माइंड है। जब भी आप किसी चीज को देख के रिएक्ट करते हैं, वो आप रिएक्ट नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि फ्लैटरिंग आप जो करता है वो अच्छा नहीं है, जो आपको जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करता है। आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरी फ्लैटरिंग कर रहा होता है, खुशामद कर रहा होता है, पर जब वो करता है फिर आपको वो अच्छा लगता है। खाली अच्छा नहीं लगता, धीरे धीरे फिर आप उसकी सुनने लगते हैं। आपको पता है कि ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तब भी आप उसी की मानते हैं। जो व्यक्ति आपकी फ्लैटरिंग नहीं करता है वो धीरे धीरे आपसे दूर होता जाता है। आपको पता है कि फ्लैटरिंग अच्छी चीज नहीं है, ये एक ट्रैप है, आप उसमें फंस सकते हैं। पर ज्यादातर लोगों को फ्लैटरिंग करें तो उनको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है कि फ्लैटरिंग अच्छी चीज नहीं है, वो आपका माइंड का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 90% जो माइंड सबकॉन्शियस है वो दूसरे तरह का ट्रेंड है, वो आपको मजबूर करता है, वो ज्यादा फोर्सफुल है आपको वो मानने के लिए जो आप जानते हैं कि गलत है। हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, पर सिचुएशन आता है तो गुस्सा आता है। जिसको गुस्सा आता है उसको भी पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, पर गुस्सा जहां से आता है वहां हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस है। 90% माइंड का पार्ट जो छुपा हुआ है, जो हमारे और आपके दिखाई में कंट्रोल में नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो जो ऊपर का हिस्सा माइंड का आप फील करते हो उससे नहीं होते हैं, वो उससे होते हैं जो छुपा हुआ हिस्सा आपका माइंड का है, जो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा है जो छुपा हुआ है, उससे आप डिसीजन लेते हो। इवन यू नो दैट इट इज रॉन्ग, स्टिल यू आर टेकिंग दैट डिसीजन। इवन यू नो दिस इज गुड, स्टिल यू आर अगेंस्ट इट। ये जो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ह्यूमन नेचर का जो पार्ट दिखता है उससे बहुत बड़ा भाग छुपा हुआ होता है, वो जो ट्रेंड माइंड है, जो सबकॉन्शियस, जो अलग अलग पैदा होने के साथ साथ हमने नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर लिया है मेमोरी बना के, या जन्म से पहले हमने लिया है। इसीलिए आप अफ्रीका में पैदा हैं, इंडिया में हैं, ब्रिटेन में हैं, अमेरिका में हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है, डिसीजन मेकिंग अलग होता है, अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता अलग होती है। हमारे पेरेंट्स और बच्चों में भी बड़ा अंतर इसीलिए दिखता है, पेरेंट्स इंडिया से आए हुए होते हैं, उनका अलग तरह के माइंड ट्रेंड माइंड होता है। बच्चे यहां पैदा होते हैं, उनका माइंड अलग तरह का ट्रेंड होता है, तो दोनों में कंफ्लिक्ट होता है। जो आपको सही लगता है वो आपके बच्चों को सही नहीं लगता, जो आपके बच्चे को सही लगता है वो आपको सही नहीं लगता। इसीलिए नहीं कि सही आप सही है या बच्चा सही है, आपकी ट्रेनिंग इसी तरह की है। आपकी ट्रेनिंग है कि मैं बंगाली हूं, मैं किसी मराठी से शादी नहीं कर सकता, मैं तमिल हूं, मैं किसी पंजाबी से शादी नहीं कर सकता। पर आपके बच्चे की ट्रेनिंग दूसरी है, उसको लगता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। पर शुद्ध मन ये बंगालियत से ऊपर होता है, पंजाबियत से ऊपर होता है, अमेरिकन से ऊपर होता है, वो पिज्जा और चावल में से कौन सा अच्छा इससे ऊपर होता है, ये उसके लिए मैटर नहीं करता। कि आप सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसीलिए जो शुद्ध मन वाला व्यक्ति वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा नहीं होता। क्योंकि हमारे और आपका जो अच्छा आदमी जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा कंडीशनिंग होता है, वो बड़ा रिलेटिवली हम डिसाइड करते हैं अच्छा कौन है। अच्छा वो है जो मेरे जैसा सोचता है, मुझे जो पसंद है वैसा करता है, वैसा बोलता है, वैसा रिएक्ट करता है, वैसे कपड़े पहनता है। बुरा वो है जो मेरे पसंद के हिसाब से नहीं है, जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं करता, जहां मैं चाहता हूं वहां नहीं करता, जैसा मैं पहनना चाहता हूं वो वैसा नहीं पहनना चाहता, वो कुछ और करता है। ईश्वर के लिए जो अच्छा है या बुरा है, वो इंसान के लिए अच्छा बुरा, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। देवियों सज्जनों, मेरा बेटा या बेटी अगर कोई दूसरे कल्चर का व्यक्ति को चुनता है तो मुझे लगता है कि मेरा या मेरी बेटी बिगड़ गई या बिगड़ गया। पर ईश्वर की दृष्टि में ये सब मैटर नहीं करता कि आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है या छोले भटूरे ज्यादा पसंद है, आपको कौन सा कपड़ा ज्यादा पसंद है, ये कोई मैटर नहीं करता। ये सोशल ट्रेनिंग है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है, उसी तरह का आप सबकॉन्शियस से पढ़ने लिखने के बाद हमें पता चला ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता, पर उसके बावजूद भी हम गुड या बैड फील करते हैं। इसीलिए देवियों सज्जनों, अच्छा आदमी या अच्छा बुरा आदमी बनना ये सोशल ट्रेंड है। साधु या शुद्ध आत्मा वाला आदमी को ना अच्छा होना होता है ना बुरा होना होता है, वो शुद्ध होता है। आपको वो बुरा लग सकता है, आपको वो अच्छा लग सकता है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड है, एक खास चीज को अच्छा मानता है और एक खास चीज को बुरा मानता है। वो व्यक्ति जिसको शुद्ध मन कहते हैं वो उस सब ट्रेंडिंग से ऊपर है, वो बिल्कुल शुद्ध है, किसी तरह का मिलावट उसमें नहीं है। वो जो सच है वो सच है, जो काला है वो काला है, जो सफेद है वो सफेद है, वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो सकता। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आपका मन निर्मल है, मतलब किसी भी तरह के अच्छा बुरा नहीं, किसी भी तरह के ट्रेनिंग से ऊपर है, किसी भी तरह के सबकॉन्शियस मेमोरी से ऊपर है, तो वो शुद्ध मन होता है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही, ज्ञान और योग में स्थिर व्यक्ति जिसका मन जब डिसीजन लेता है तो विथ फुल अवेयरनेस लेता है, ज्ञान के साथ डिसीजन लेता है। हमारा डिसीजन जब भी होता है वो अननोइंगली होता है, हमारे चाहते हुए भी हम गलत डिसीजन लेते हैं, हमें पता है कि ये रॉन्ग है तब भी हम वो डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे कंपल्शंस होते हैं डिसीजन लेने में, पर दिव्यता जो है, देवत्व वाला व्यक्ति का जो ज्ञान है, उसका जो डिसीजन है, वो अवेयरनेस के साथ होता है, कि उसको पता होता है कि वो जो करने जा रहा है उसकी सबकॉन्शियस भी उसके साथ है, उसकी अनकॉन्शियस भी उसके साथ है, और उसकी कॉन्शियसनेस भी उसके साथ है। तीनों के साथ जब आप चलते, आप डिसीजन लेते हैं अपने बारे में या किसी के बारे में, तो फिर वो सही ज्ञान योग व्यवस्थिति होती है, ज्ञान या योग पर स्थिर व्यक्ति होता है। ये जो जागरूकता है, अवेयरनेस है हमारी हर एक्टिविटीज में, तब व्यक्ति देवत्व को प्राप्त करने के लिए क्षमता रखता है। हमारा ज्यादातर निर्णय वो जो ट्रेंड माइंड के द्वारा होता है, न कि अवेयरनेस के साथ चलता है। जन्म जन्मांतरों से कितने पशु पक्षी पेड़ पौधों का जन्म लेकर हम पैदा हुए हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस में इकट्ठा है, और उसके बाद सोसाइटी की ट्रेनिंग भी हमारे साथ है। अगला कहा दानम एंड दमश्च, देने की जो प्रवृत्ति है ये देवत्व है, और छीनने की जो प्रवृत्ति है वो राक्षसत्व है, वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे, जो डेविल नेचर है। फिलहाल हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो डिवाइन नेचर है, जो हर आदमी के अंदर है। हमने किसी में कोई दबा के रखा है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर मिसपरसेप्शन के साथ है, कुछ गलत अवधारणाओं के साथ कोई रखा है। दान देने की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति इसीलिए नहीं है कि कोई गरीब है, कोई हेल्पलेस है तो आप उसको हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं है। देने की प्रवृत्ति है कि आपको देना है, जो मेरे पास है वो देना है और उस देने में खुशी मिले। किसी पर एहसान करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को ग्रेटफुल करने के लिए नहीं दिख दे रहा हूं, मैं किसी को हेल्प करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है। ये दान व्यक्ति को देवत्व की ओर लेता है। देने में भी राक्षसत्व होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। इवन दानी लोग भी बड़े बड़े असुर होते हैं। देने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, आप उसे क्या अचीव करना चाहते हैं। पर देने में अगर आपको प्रसन्नता मिलती है तो वो दिव्य देवत्व को प्राप्त करता है। आप उपवास करते हैं, फास्ट रखते हैं, जब आप फास्ट रखते हैं किसी भी रीजन से रखते हैं, किसी देवता को पूजने के लिए, कोई व्रत के कारण, किसी भी कारण आप रखते हैं, तो फास्टिंग में जो सबसे पहला आपके मन में विचार आता रहता है कि फास्टिंग कब खत्म होगी, खाना कब खाएंगे। जिसके लिए रखते हैं वो सोसाइटी में आप क्या डिस्प्ले करते हैं, दैट डजंट मैटर। आपके मन में क्या चल रहा होता है, आज थर्सडे है, आज शुक्रवार है, आज मुझे फास्ट रखना है, वो पिछले रात को तैयारी शुरू हो जाती है। ज्यादा खा लेना, दूध थोड़ा ज्यादा पी लेना, कल फास्ट है। दिन भर चलती है कि शाम को क्या बनाना है, क्या खाना है। सूरज अभी ढला नहीं है, अभी 4 ही बजाए, 6 कब बजेगा। दूसरा उपवास है, आपके घर में कोई अतिथि आ गया, आपके पास खाने के लिए एक ही प्लेट है, आप अतिथि को पहले खिला रहे हैं, आप खा लीजिए, उपवास आपका हो गया और खाने को कुछ है नहीं है। अतिथि को खाते देख करके आप खुश हैं, वो दान भी हुआ और उस दान के पीछे जो खुशी मिली वो दिव्यत्व का खुशी है। अब अगर उस दान में आपको कोई प्रसन्नता नहीं मिली, किसी गरीब घर के मां को देखिए, खाना कम है तो बच्चों को खिला देती है, खुद भूखा सो जाती है, पर आप उससे ना पब्लिक में ना अंदर कहीं आप उसके दुख नहीं देखेंगे। उसको इस बात का दुख है, दर्द है, पीड़ा है कि मैं नहीं खा पाई, मैं भूखे में सो रही हूं, ऐसा आपको मां में नहीं मिलेगा। अगर उसके बच्चे उसके खाना खा करके पेट भरे हैं, वो उपवास जेन्युइन है, वो उपवास भी है, पर उस उपवास के साथ एक दिव्यता जुड़ी हुई है, एक डिविनिटी जुड़ी हुई है जिससे उसको आनंद देता है। अगर उसमें आपको आनंद नहीं मिल रहा है तो वो आपको आसुर की ओर, आसुरी प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है। लेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ले जा सकता है। इसलिए दान दे करके किसी पर जब आप हम हेल्प करते हैं, किसी को हम अगर मदद करते हैं, उससे अगर आपको एक अजीब सी सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, तो वो आपकी दिव्यता है, वो आपकी बड़प्पन है, वो आपकी महानता है, वो आपको महान बनाएगा। पर देने पर अगर आपके अंदर अकड़ आता है, आपके अंदर ये ईगो आता है कि मैंने किसी को हेल्प किया, मैंने किसी के लिए कुछ किया, ये भाव अगर आपके माइंड में आता है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो और बुरी चीज है, पर नहीं भी करते हैं तो वो दान आपके लिए बेकार है। वो दान की जो कैटेगरी है वो डिवाइन वाले कैटेगरी में नहीं आ सकता। दान देने पर अगर मैं विनम्र बन जाऊं, मैं ज्यादा हम्बल बन जाऊं, मुझे लगे कि मेरे से कारण, अगर किसी के कारण मेरे से कुछ अच्छा काम हो गया तो वो मेरे लिए बड़ा व्यक्ति है, उसके कारण मुझे करने को मौका मिला, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर वो दिव्यता है, वो देवत्व है, उसको पॉलिश करने की ज्यादा जरूरत है। और जब आप दान देते हैं तो बाय प्रोडक्ट आपका दम होता है। दम का मतलब इंद्रिय निग्रह, आप उपवास रख के अपने सेंसेस को दबा रहे हैं, अपने भूख को दबा रहे हैं फास्ट करके। दूसरा है कि आप ऐसी फास्ट कर रहे हैं जिससे किस आपको खुशी मिल रही है, जहां आपको अपने सेंस को दबाने की फीलिंग भी नहीं हो रही है। आप खुश हैं, कोई सामने वाला खा रहा है और आप भूखे रह गए उसके कारण, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक प्लेट था। पर आप फास्ट कर रहे हैं, मतलब आप इंद्रिय को निग्रह कर रहे हैं, अपने भूख को रोक रहे हैं, पर दिन भर आप इस परेशानी के साथ जी रहे हैं, कब इसे छुटकारा मिले? तो वो इंद्रिय निग्रह आपकी मेंटली नहीं हो रहा है, वो फिजिकली हो रहा है। और जो चीज आप फिजिकली कर रहे हैं, माइंड की परमिशन के बिना कर रहे हैं, वो व्यक्ति को हिपोक्रेट बनाता है और ज्यादा खराब बनाता है। इसी तरह यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। यज्ञ ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। जो यज्ञ आप करते हैं मैटेरियली अग्नि में आहुति देकर, या जो यज्ञ आपके अंदर चलता है सैक्रिफाइस करने का, इदन्न मम दिस इज नॉट माइन, कलेक्टिवनेस के लिए, समूह के लिए जब आप कुछ त्याग करते हैं, इंडिविजुअलिटी को छोड़कर जब आप कलेक्टिवनेस में जाते हैं, तो वो यज्ञ कहलाता है। वो आप ये अग्निहोत्र वाला यज्ञ करिए, जहां आप घी सामग्री वगैरह को पर्सनल यूज ना करके आप एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर को फायदा हो, आपके पड़ोसी तक भी फायदा पहुंचे। या आपके अंदर जो यज्ञ है, जहां आप अपने अहंकार को, गर्व को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, वहां भी यज्ञ चलता है। तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। जैसे जैसे हमारे अंदर इस यज्ञ की भावना कल्टीवेट होता जाएगा, उतना व्यक्ति के अंदर देवत्व आता जाएगा। बाहरी यज्ञ आपको हेल्प कर सकता है, अगर अंदर का अंदर भी यज्ञ करने की कोशिश करें। अगेन आई एम सेइंग, जो चीज हम फिजिकली करते हैं, अगर उसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हमें हिपोक्रेट बनाता है, हमें ज्यादा खराब बना सकता है। अगर मेंटली हम इन्वॉल्वमेंट हो, अंदर भी वही चीजें चले, तो वह हमें दिव्यत्व की ओर ले जाता है, देवत्व की ओर ले जाता है। स्वाध्याय पढ़ना लिखना, हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट रखना, अपने बारे में जानना। स्व अध्याय, इसके दो मीनिंग है, लर्निंग सेल्फ एंड सेल्फ लर्निंग। खुद के द्वारा पढ़ने की कोशिश करना, जो क्लास में पढ़ते हैं, जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, उसके अलावा भी सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ाई करना कुछ, और सेल्फ क्यों पढ़ना, लर्निंग सेल्फ, अपने आप को पढ़ना, मैं कैसा हूं, क्या हूं, मेरा चरित्र क्या है, मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, पैदा होने से पहले क्या था। तो व्यक्ति यकीन मानिए वो बेहतर बनता जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना अपने बारे में भी सोचने लगे, बी ए सेल्फिश मैन बट स्मार्टली, अपने बारे में सोचें बट स्मार्टली सोचें, तो आप बाकियों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे, आप देवत्व को प्राप्त करेंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, कैसा, मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये सेल्फ स्टडी जो स्वाध्याय है, संसार को समझो, खुद को समझो, ये जो समझने की प्रक्रिया जिसके अंदर जग गई, जिसके अंदर ये भाव जग गया कि मुझे समझना है खुद को, और खुद से दुनिया को, दूसरों के नजरिए से नहीं, खुद के नजरिए से, तो फिर उसके अंदर का डिविनिटी, जो देवत्व है, वो जगता है। इसी तरह तप, कष्ट सहने की शक्ति जिसमें हो, हु हैज एबिलिटी टू बियर ऑल टाइप्स ऑफ पेन्स एंड प्लेजर्स। कष्ट सहना तो हमें पता है कि भाई सहने की आदत डालनी चाहिए, पर प्लेजर सहने की हमने कभी सुना नहीं था। देवियों सज्जनों और ध्यान रखिएगा, इंसान सिर्फ दुख से, परेशानी से, दर्द से नहीं टूटता है, आदमी सुख से भी टूटता है। जब आदमी के पास सुख आता है तो अहंकार से टूटता है, जब उसके पास दुख आता है तो दीनता से, कॉम्प्लेक्स से टूटता है। जो सुख को हैंडल नहीं कर सकते, यकीन मानिए वो दुख को भी हैंडल नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, जो लोग सुइसाइड करते हैं, उनकी लाइफ को देखिएगा, वो लोग हैं जो सुख में इतना ज्यादा उछलते हैं, उनको ये एक्सेप्ट करने के लिए मौका ही नहीं मिलता कि जीवन में दुख भी हो सकता है। दैट मीन्स उन्होंने सुख को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ये सुख और दुख को, दोनों को डाइजेस्ट करने की जो एक्सरसाइज है उसे हम तप कहते हैं। तपः द्वंद्व सहनम, पेयर ऑफ अपोजिट, दो अपोजिट चीजों को सहने की आदत डालना, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, निंदा हो प्रशंसा हो, इट्स नॉट एन ईजी वे, पर प्रैक्टिस करने का नाम तप है। और अगर ये तप के रास्ते पर आप चल पड़े हैं तो आपके अंदर की डिविनिटी जगने जग रही है। अगला है आर्जवम, अपराइटनेस, ट्रेड फॉरवर्डनेस, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई पॉलिटिकली करेक्टनेस नहीं, ट्रेड फॉरवर्डनेस, सिंप्लिसिटी, सीधापन, सरलता। सीधापन बोलने में बड़ा सीधा है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बी ए सिंपल मैन। आप जिस दिन सिंपल होने लगेंगे, आपके घर वाले आपसे चिढ़ने लगेंगे, आपकी सोसाइटी आपसे चिढ़ने लगेगी, दुनिया आपसे दुखी होने लगेगा। पर यू हैव दैट करेज टू बी ए सिंपल मैन। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मीन्स आपका मन और वचन में जो कुछ है सब एक जैसा है। गुस्सा है तो सामने है, प्यार है तो सामने है, ये सीधापन है। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई करेक्टनेस नहीं, जो है वो है। सोसाइटी में रहने के लिए हमें बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दैट्स ओके, पर यकीन मानिए मरने के बाद जवाब हमें अकेले देना पड़ता है ईश्वर को। कोई सोसाइटी साथ नहीं जाएगी जवाब देने के लिए, ना आपका ऑफिस जाएगा, ना आपके मां बाप जाएंगे, ना आपके पति पत्नी जाएंगे, ना आपके बच्चे जाएंगे। नो वन विल बी देयर टू बी एन अटर्नी ऑफ यू, यू विल बी ओनली वन टू डिफेंड योर सेल्फ। तो सोशियली करेक्ट उतना बनिए जितना आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत है। रह रहे हैं, कमाना पड़ता है, रहना पड़ता है, हेल्प भी चाहिए, जिंदा भी रहना है। सीधापन बड़ा अच्छा लगता है पर होना मुश्किल है। पर अगर किसी के अंदर यह सीधापन आ गया हो, दिखावटीपन कम हो गया हो, तो वो देवत्व की ज्यादा करीब होता जा रहा है। अगला है अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति रपयीशुनम। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हार्मलेसनेस, किसी को कष्ट पहुंचाने का कोई भाव, कोई इंटेंशन न रखना। अहिंसा का अर्थ यह नहीं है किसी को नुकसान ना पहुंचाना। अगेन आई एम रिपीटिंग, अहिंसा मीन्स नॉट टू हार्म एनीवन। अहिंसा मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू हार्म एनीवन। कभी कभी सोशियली करेक्ट होने के लिए हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, पर मेंटली हम अगर बस चले तो हम तो रोन डाले। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल वायलेंस, ये मेंटल भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है, पर ये होता तब है ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के साम्राज्य में। ये मैटर नहीं करता है कि आप फिजिकली क्या कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपका इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। और सबसे अच्छा तरीका है इस रास्ते पर चलने के लिए, दूसरों को अपना जैसा समझें। अगर मुझे दर्द होता है कांटा चुभने से, तो सबको दर्द होता होगा, तो जिसको भी कांटा चुभे मुझे वो फील होना चाहिए कि मुझे कांटा चुभने से जो जितना दर्द होता है सामने वाले को भी उतना दर्द हो रहा होगा। मुझे कोई चीज अगर खुशी देता है तो सामने वाले को भी उसी चीज से खुशी मिलती होगी। ये छोटी सी ट्रिक है, तरीका है अहिंसा को प्रैक्टिस करने का, जो मेरे साथ है, हो रहा है, मुझे जैसा फील हो रहा है दूसरे को भी वैसा हो रहा होगा। अगर ये हम मान के चलें, सब में अपने आप को देखने की कोशिश करें, वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, तो वो अहिंसा अपने आप मेंटली हमारे अंदर कल्टीवेट होने लगेगा। फिर जब आप किसी को मारने दौड़ेंगे, आपको भी समझ आएगा मारने से कितना दर्द होता है। जब आप चिल्लाने दौड़ेंगे, आपको पता चलेगा कि आप पर चिल्लाने से आपको कैसे लगता है। किसी को चीट करने जाएंगे, आपको फील होना चाहिए कि चीटेड होने पर आपको कैसे लगता है। जब फीलिंग आ जाने जाए, मोस्ट ऑफ आपकी जो वायलेंट एक्टिविटीज है वो कम होता जाएगा। तो ये सोच जरूरी है कि मैं, मेरे जैसे सारे संसार है, सुख और दुख मुझे जिसमें हो रहा है सबको उसमें होता है। अगर मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ है और है, तो मैं उस देवत्व के आसपास हूं, मेरे अंदर वो डिवाइन जो नेचर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग पावर में है, उसको कल्टीवेट करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव समझता हूं, या मेरे बिहेवियर में जब व्यवहार करता हूं मैं अपने आप को बिल्कुल अलग समझता हूं, दूसरों को अलग तरह के ट्रीट करता हूं, तो मेरा देवत्व छुपा हुआ है, बहुत सप्रेस्ड है, उसको सामने लाने की जरूरत है। इसी तरह सत्य भी है। हम जानते हैं सत्य, सच, सत्य बोलते ही हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि सच बोलना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ। ये कोई सच नहीं है, स्पीकिंग ट्रूथ कोई सच नहीं है। सच ये है कि आपका मन, वचन और व्यवहार तीनों में एक जैसा पन होना चाहिए, सिमिलरिटीज और इक्वालिटीज बिटवीन योर इंटेंशन, योर बिहेवियर, योर एक्शन एंड योर स्पीच। मन, वचन और कर्म में जब एक रूपता आ जाती है तब वो सत्य होता है, ऑनेस्टी होती है। फिर आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि सत्य बोलने पर हमने क्यों जोर दिया, क्योंकि ये हमें सुहाता है। हम जब चाहिए, जब चाहें तब हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। हमने कहानी सुनी थी, एक कम्युनिटी में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता था, सब अहिंसा को मानते थे, किसी को हिंसा नहीं करना, किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचाना, दूध तक भी नहीं पीना क्योंकि उसमें खून है, अंडा खा सकते हैं क्योंकि अंडे में बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, पर दूध नहीं पिएंगे क्योंकि वो खून है। सबके अलग अलग कंसेप्ट है। उनके जो साधु थे वो पॉकेट में हमेशा गन रखते थे, बंदूक रखते थे। लोगों ने पूछा, भक्तों ने, कि जी आप ये अहिंसा के गुरु हैं, ये बंदूक लेकर चलते हैं। ना, बंदूक हिंसा करने के लिए नहीं है, हिंसा रोकने के लिए। बंदूक देख के हिंसा करने वाले नहीं करेंगे। एक दिन उनका एक बड़ा शत्रु सामने छुपा हुआ था, उसको बहुत तंग कर रहा था, एक पागल जैसा पागल कुत्ता था जो उनको काटने के लिए दौड़ता था। बहुत दिन तक उन्होंने सहा, एक दिन अकेले में देखा वो झाड़ी में छुपा हुआ है कुत्ता, तो उन्होंने बंदूक खोला लगाने की कोशिश की। सामने लोग आए थे, ये आप क्या कर रहे हो, बंदूक चला रहे हो, आप मार रहे हो? बोले, नहीं, मैं नहीं मार रहा हूं, उसको गोली नहीं मार रहा हूं, मेरी गोली जहां जा रही है वो वहां आ जाता है, मैं उसको नहीं मार रहा हूं, मैं अभी भी अहिंसावादी हूं, वो आ जाता है वहां। तो सत्य बुलवाना बड़ा आसान है, इट नीड्स डिप्लोमेटिकल एबिलिटी। आप एक ही बात को, झूठ को भी ऐसे डिप्लोमेटिकली बोले तो सच लगे। आप किसी चीज को आर्ग्यू करके प्रूव कर सकते हैं, पर सत्य इंटेंशन से होना चाहिए। ऑनेस्टी शुड बी इन योर इंटेंशन, नॉट इन योर एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज। आप क्या बता रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है। आपके इंटेंशन में क्या है, इंटेंशन में मारना है तो आप अपने हिंसा को भी कोई ना कोई लॉजिक देके प्रूव करेंगे कि अहिंसा है। इसी तरह अक्रोध, क्रोध ना करना, बड़े नुकसान होते हैं क्रोध से। करने वालों को भी, उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को भी नुकसान होता है। जितना व्यक्ति अपने क्रोध पर कंट्रोल करता है उतना उसका देवत्व आसान होता है, जितना कम कंट्रोल करता है उससे उतने ज्यादा नुकसान होने की संभावना ही ज्यादा है। और एक लेकर के यहीं समाप्त करेंगे। त्याग, त्याग मतलब छोड़ने की प्रवृत्ति। ध्यान रखिए, जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण जिन देवी संपद की बात कर रहे हैं, जो डिवाइन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं। आप फिजिकल एक्टिविटीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो मेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं। त्याग एज ए स्टेट ऑफ योर माइंड, न कि फिजिकली आप क्या त्याग कर रहे हैं। क्योंकि जो फिजिकली करते हैं उसके अगेन उसके पीछे आपका इंटेंशन है, वो डाउटफुल रहता है। त्याग आप अंदर से कितना छोड़ने को तैयार हैं। जनक ऋषि, ऋषि राजा थे, ऋषियों के सभा में हमेशा जाया करते थे। वशिष्ठ ऋषियों के आश्रम जो सभा होती थी उसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। जब जनक आते थे तो वशिष्ठ उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे, अपने पास बैठाते थे। बाकी ऋषियों को लगता था कि वशिष्ठ को थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे कि हम लोगों की एक आदत है, हम पॉलिटिक्स करने वाले लोगों की खूब बुराई करते हैं, लीडर्स की खूब बुराई करते हैं, पर हर चीज में पॉलिटिकल लीडर को चीफ गेस्ट बनाते हैं। वो मंदिर हो, किसी साधु संन्यासी की सभा हो, किसी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक प्रोग्राम हो, जब कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो हम खुश हो जाते हैं और बुलाते रहते हैं। ये जो हिपोक्रेसी है, ये भी एक ह्यूमन नेचर है। तो ऋषियों को लगा कि जनक क्योंकि राजा हैं, इसीलिए वशिष्ठ उनको रेस्पेक्ट करते हैं, जबकि ऋषियों की सभा में राजा का क्या मतलब होता है, राजा तो ऋषियों से बहुत छोटा होता है। वशिष्ठ को यह पता चला कि लोगों का उनके बारे में इस तरह के विचार है, तो उन्होंने कहा कि यह क्लियर होना चाहिए। तो एक दिन सभा चल रही है ऋषियों की, जंगल से एक आदमी दौड़े दौड़े आया और सभा में बोला, ऋषियों के आश्रमों में आग लग गया है। ऋषि लोग भागने लगे, आश्रमों में क्या है, आजकल की तरह साधु संन्यासियों के आश्रमों की तरह कोई फाइव स्टार होटल तो नहीं होता था, घास फूस की झोपड़ी है, अंदर ज्यादा से ज्यादा कुछ यज्ञ करने की लकड़ियां होती थी, कुछ एक आधा लंगोट होते थे, एक लोटा होता था, दैट्स इट, कुछ घास फूस होते थे और तो कुछ होता नहीं था। तब भी वो भागे बचाने के लिए अपने कुटियाओं को। बात गई एक दो महीने के बाद, अगेन सभा चल रही है, राजभवन से एक दूत दौड़े दौड़े आया, बोला कि राजभवन में आग लगा हुआ है, जनक बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बिल्कुल जैसे पहले थे, आग लगने का खबर सुनने के बाद भी उतने ही शांत बैठे हुए हैं, कोई चेंज नहीं है, ना उनके फेशियल एक्सप्रेशन में, ना उनके कोई व्यवहार में कोई चेंज नहीं है। सभा समाप्त हुई, वशिष्ठ ने ऋषियों को पूछा, जनक चले जाने पर आप उस दिन आग लगने की समाचार सुन के क्यों दौड़े थे? बोले, अपने कुटियाओं को बचाने के लिए। बोले, उस कुटिया में आपका है क्या है? घास फूस की झोपड़ी है, उसमें सारे मिला के एक रुपए का सामान नहीं होगा। जनक के राजभवन में आग लगने पर जनक तो नहीं दौड़ा, कोई एक्सप्रेशन में कोई फेशियल एक्सप्रेशन में भी कोई चेंज नहीं था। आप लोगों को लगता था कि मैं जनक को क्यों इतना रिस्पेक्ट देता हूं? आप ऋषि बन चुके हो फिजिकली, मेंटली यू हैव टू गो सो फार, आपको और बहुत दूर जाना है मेंटली ऋषि बनने के लिए। अभी भी ये 2% की झोंपड़ी में आपकी अटैचमेंट लगा हुआ है, आप ऊपर से तो संसार छोड़ चुके हो, अंदर से अभी भी आपकी वो अटैचमेंट की प्रवृत्ति है। और जनक राजभवन में रहता है, करोड़ों की संपत्ति में रहता है, पर मेंटली टोटली डिटैच्ड, इसीलिए वो राजा होने पर भी तुमसे ज्यादा बड़ा त्यागी है, ज्यादा बड़ा ऋषि है। तुम्हें उस लेवल पर पहुंचोगे तो तुम्हें भी वही सम्मान मिलेगा। तो देवियों सज्जनों, त्याग भी अंदर से होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम योर माइंड, कि फिजिकली आप क्या करते हैं। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, दैवी संपत्ति, उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे हमारे अंदर वो आसुरी गुण क्या क्या है जिनको हमें समझने की जरूरत है। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
आदरणीय आचार्य जी, पात्र